जानवी का सवाल सुनकर अमर का चेहरा सफ़ेद पड़ गया और उसने थोड़ी हकलाती ज़ुबान में कहा, बच्चा ये कैसा सवाल है? मैंने तो तुमसे कभी नहीं पूछा तुम वर्जिन हो या नहीं। इनफैक्ट मुझे लगता है किसी भी कपल को अपनी शादी की शुरुआत में ऐसे सवाल नहीं करने चाहिए। इससे पता चलता है कि उनके बीच ट्रस्ट नाम की चीज़ नहीं है। जानवी का चेहरा छोटा सा हो गया और उसकी आंखें ऐसे हो गईं जैसे वो अभी रो देगी और उसने भरे गले से अमर की शर्ट पकड़ते हुए कहा, मैं बता ही हूँ आपको, मैं वर्जिन हूँ। अब आप बताइए, बात को घुमाइए मत। मुझे माही कह रही थी कि आपके आगे पीछे मेरी जैसी हज़ार लड़कियाँ घूमती हैं और आपका रोज़ उनके साथ संबंध भी बनता होगा, और मैं तो आपको खुश भी नहीं रखती तो आप भी खुशी खुशी उनके पास चले जाते होंगे। पर मैंने उसे डांट दिया, मेरे पति ऐसे नहीं हैं, मुझे उन पर पूरा विश्वास है। पर अब मैं सामने से आपको पूछ रही हूँ, क्या कभी आपकी कोई गर्लफ्रेंड थी? उसके इस बात पर अमर को हंसी आ गई। वो उसके करीब बैठते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला, नहीं बच्चा, मेरी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। अब खुश? जानवी ने हल्की सी स्माइल की और फिर अमर की आंखों में देखते हुए बोली, तो फिर आप मुझे क्यों नहीं छूते हैं? आपको मैं अच्छी नहीं लगती हूँ? वरना तो पति पत्नी के बीच इतना समय निकल जाए तो उनका संबंध बन ही जाता है, हमारे बीच क्यों नहीं बना? अमर को जानवी पर टूट कर प्यार आ रहा था। उसने उसके फोरहेड को चूमते हुए कहा, क्या तुम चाहती हो हमारे बीच संबंध बने? क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है तुम्हें मुझसे डर लगता है। तुम खुद मेरे करीब नहीं आना चाहती और मैं तुम्हारे साथ किसी भी तरह की ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता हूँ बच्चा। बस ये एक छोटा सा रीज़न है। बाकी तुम मुझे कितनी पसंद हो ये शायद मैं कभी तुम्हें बता ही नहीं पाऊँगा, पर ना कभी तुम पता लगा पाओगी, क्योंकि उसे नापने के लिए आज तक कोई स्केल नहीं बन पाया है और ना कभी बन पाएगा। उसकी बातें सुनकर जानवी के आंसू उसके गालों पर आ गए और वो आगे बढ़ते हुए अमर के गले लग गई। अमर ने उसके बाल सहलाते हुए कहा, बस बच्चा, अब और नहीं रोना, तुम ऑलरेडी बहुत रो चुकी हो। उसने इतना कहा ही था कि रूम का डोर लॉक हुआ, शायद उनका खाना आ चुका था। अमर ने आहिस्ता से जानवी को खुद से अलग किया और फिर दरवाजे पर जाकर खाना अंदर ले आया। उसने बेड पर वो खाना रखते हुए कहा, मैं अभी हाथ धोकर आया, ठीक है? रोना नहीं बिल्कुल। जानवी ने हम में सर हिलाया, पर उसका रोना उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था। उसे बार बार कभी त्रिशा याद आ रही थी तो कभी माही। मैं तुम्हारी दी नहीं हूँ, ये शब्द त्रिशा ने भले ही नॉर्मल वे में बोले थे क्योंकि उसे किसी रिश्ते से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जानवी को उसके ये पांच शब्द पांच तीर जैसे दिल में चुभ रहे थे। अमर जल्दी से वापस आया और उसके सामने बैठते हुए उसे खाना खिलाने लगा। वहीं जानवी का चेहरा देखकर लग रहा था इस वक्त वो बहुत गहरी सोच में डूबी है। अमर ने उसके गाल को छूते हुए कहा, क्या हुआ बच्चा, क्या सोच रही हो? जानवी ने एक बाइट तोड़ते हुए अमर के मुंह में डालते हुए कहा, वो तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी कि मैं क्या सोच रही हूँ, अभी आप खाना खाओ। अमर को उसकी बात पर हंसी आ गई, पर उसने पलटकर उसे जवाब नहीं दिया क्योंकि उसकी टोन को देखकर ही पता चल रहा था कुछ ना कुछ उठपटांग ही उसे करना है, और उसकी इन बच्चों वाली हरकतों से अमर कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस हो रहा था। उसने फिर से जानवी को खाना खिलाना शुरू कर दिया। करीब 15 मिनट बाद ही उन दोनों का खाना हो चुका था तो अमर उन बर्तनों को साइड में रखते हुए बोला, अब जाओ तुम फ्रेश होकर आ जाओ, गर्मी ज्यादा है, नहाने के बाद अच्छी नींद आती है। जानवी ने हम में सर हिलाया और झट से बेड से उठती हुई बाथरूम में चली गई। उसकी ये स्पीड देखकर अमर ने अपने मन में कहा, ऐसा क्या खुराफाती करना है इसे जो इतनी स्पीड में जा रही है। उसके जाते ही अमर का फोन बजने लगा था। अमर ने फोन पर देखा तो समर्थ का नाम फ्लैश हो रहा था। अमर ने कॉल पिक करते हुए कहा, समर्थ, मैं तुम्हें कितनी बार कहा है उस विश्वास अंकल के घर तुम अकेले मत जाया करो। उधर से समर्थ ने हताश भरी आवाज में कहा, भाई मुझे लग रहा है हम गलत इंसान पर शक कर रहे हैं, विश्वास अंकल ये सब नहीं कर सकते। मैंने सब कुछ चेक कर लिया, अपना सारा सोर्सेज लगा दिए, पर उनके खिलाफ मुझे एक सबूत तक नहीं मिला। बस हम पर्सनल दुश्मनी की वजह से ये तो डिसाइड नहीं कर सकते कि हमारे साथ होने वाला हर बुरा काम वही कर रहे हैं। उन्हें बस प्रॉपर्टी चाहिए थी जो उन्हें मिल गई। अब मुझे लग रहा है हमारा कोई नया दुश्मन है और वो इसी बात का फायदा उठा रहा है कि हम किसी और पर शक ना करके सीधा विश्वास अंकल के पास आ जाते हैं। आज मेरी और विश्वास अंकल की अच्छी खासी बहस हुई है और हमेशा की तरह उन्होंने वही बातें कही हैं जो वो पहले कहते हैं कि उन्हें खुद नहीं पता कि वो मेरे साथ क्या कर देते हैं। हमेशा मैं ही उन्हें जाकर बताता हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है और मुझे लगता है कि उन्होंने किया है। अमर ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हम कहीं ना कहीं ये गलती कर रहे हैं कि हर बार विश्वास अंकल पर ही शक कर रहे हैं। पर फिर भी तुम उनके पास अकेले मत जाया करो, बात साफ है, अब घर वापस आ जाओ और उस त्रिशा को समझाओ। वो जानवी को पता नहीं क्या क्या उठपटांग बोल रही थी जिससे आज जानवी पूरे दिन रो रही थी। ये सुनकर समर्थ ने गुस्से में अपनी मुठ्ठियां कस ली और जबड़े करते हुए बोला, जी भाई मैं उसे समझा दूंगा, आप चिंता ना करें। उसका फोन कटा ही था, कितने में जानवी जल्दी से वापस आ गई। उसने इस वक्त एक येलो कलर का लहंगा पहना था और येलो स्लीवलेस ब्लाउज, और वो बिना दुपट्टे ही दौड़ते हुए अमर के करीब आ रही थी। उसके गीले बाल आधे उसके सीने से चिपके थे तो आधे उसके गाल से। उसे इतनी हॉट लुक में आते देखकर अमर के शरीर में जैसे झनझनाहट फैल गई थी। हड़बड़ाहट में उसका फोन भी छूटकर गिर गया। जैसे ही फोन गिरने की आवाज आई, अमर को होश आया और उसने अपने सूखते होठों पर जीभ फिराते हुए कहा, बच्चा तुम्हारा दुपट्टा कहाँ गया? जानवी उसके करीब आकर बैठते हुए बोली, क्यों मुझे आपके सामने भी दुपट्टा लेने की जरूरत है? अमर ने एकटक उसकी गौरी कमर को देखते हुए कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, पर जानवी ने उसकी तरफ मुड़कर उसका हाथ पकड़ लिया और फिर धीमी आवाज में बोली, पर क्या? अमर ने उसे अपना हाथ छुड़ाते हुए उसके गिले बालों में अपना हाथ उलझा लिया और उसे अपने करीब करते हुए उसके सर से सर जोड़ते हुए गहरी सांसों के साथ बोला, पर मैं तुम्हें ऐसे देखकर खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, तो ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है।